अस्सलाम वालेकुम।
हम ये लेक्चर नंबर 38 जिसका उन्वान जमानी और मकानी फासले है ये पढ़ रहे हैं, और हमने आज इसका ज़ेली उन्वान लैलतुल कदर और स्या नुक्ता, सफा नंबर 323 ये पढ़ना शुरू करना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمان میں فاصلہ نہیں ہوتا اور مقام میں حد بندی ہوتی ہے۔ اس جملے کو ذرا رک جائیے، آرام سے دوبارہ سنیں، بار بار پڑھیں اور اسے ذہن نشین کر لیں۔ زمانیت میں فاصلے نہیں ہوتے اور مکان میں حد بندی ہوتی ہے۔ حد بندی ڈیمارکیشنز بھی ہے، جب آپ ایک تصویر بناتے ہیں تو اصل میں ایک لائن ڈرا کر کے کیا کرتے ہیں کہ وہ لائن جو ہے وہ اس کو باقی علاقے سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ کاغذ کے پہ جو پورا کاغذ سفید ہے اس پہ آپ ایک کبوتر بناتے ہیں، تو وہ جو کبوتر کی لائن بنا رہے ہیں وہ اصل میں اس کو باقی سفید رنگ سے الگ کر رہی ہے، یعنی اس کی حدیں مقرر کر رہی ہے۔ جو ہی اس میں حدیں مقرر ہوتی ہیں تو آپ کو کبوتر کی شبیہ دکھنے لگتی ہے۔ یہ ہے مکانیت۔ اب آگے راز کی بات سنیں۔ کائنات ایک نقطہ ہے اور یہی نقطہ مختلف حرکات میں سفر کرتا ہے۔ وہ میں نے جو مثال آپ سے عرض کی تھی کہ پینسل یا قلم کو جب آپ کاغذ پہ رکھتے ہیں تو ایک نقطہ، ایک ڈاٹ بنتی ہے۔ جوں جوں آپ قلم کو گھماتے چلے جاتے ہیں وہ ایک لکیر بنتی چلی جاتی ہے اور ایک شکل بنتی چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کائناتی نظام بھی اصل میں سیاہ نقطے کی کاریگری ہے۔ یہ ساری کائنات ایک نقطہ ہے اور وہ سیاہ نقطہ جو ہے یہ مختلف حرکات میں سفر کرتا ہے۔ آپ ایک اور نقطے پہ غور کریں اور وہ ہے بال پوائنٹ۔ بال پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ بال کا ایک پوائنٹ بنتا ہے، یعنی یہ جو جس کو ہم بال پوائنٹ پین کہتے ہیں، اس پین میں آگے ایک چھوٹی سی گولی لگی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر گھومتی ہے اور سیاہی کو اپنے ساتھ لپیٹ کے تو ایک نقطہ بناتی ہے، اور پھر جب ہم اسے گھماتے ہیں تو اس کے اندر کی گولی گھومتی ہے اور ایک لکیر بنتی ہے۔ اس سے آپ چاہے تصویریں بنائیں، چاہے حروف بنائیں، چاہے الفاظ بنائیں، چاہے کوئی شکلیں بنائیں۔ تو بعین ہی یہ سیاہ نقطہ جو ہے، یہ کائنات میں مختلف حرکات میں سفر کر رہا ہے۔ اب ان نقطوں کی ٹوٹ پھوٹ اور تکرار سے دوسرے بے شمار نقطے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک میکانزم پر تخلیق کی ہے اور یہ میکانزم بہت سے سیاہ نقطوں سے بنا ہے۔ نقطوں کی حرکت نقطوں کی گردش دوہری ہوتی ہے۔ یہ دوہری حرکت ہر سمت میں واقع ہوتی ہے۔ سیاہ نقطہ یعنی زمان، زمانیت جو ہے یہ ہے وہ سیاہ نقطہ۔ دیکھیں نا، پین کا آگے جو ٹپ ہے اس کے پیچھے ایک پین ہے، پین کو پکڑنے والا ایک ہاتھ ہے، ہاتھ کو چلانے والا پیچھے ایک ذہن بھی ہے۔ تو یہ نقطہ جو ہے یہ زمانیت ہے، زمان ہے۔ یہاں واشگاف لکھ دیا کہ سیاہ نقطہ اور بریکٹ میں لکھ دیا زمان۔ پہنائی اور گہرائی کی سمتوں میں پے در پے متحرک رہتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تکرار کرتا رہتا ہے۔ نقطے کی تکرار وسط यानी स्पेस है। नुक्ता जब तकरार करता है तो वो वुसत यानी फैलता है, और ये उसका फैलाव वुसत इख्तियार करना ये स्पेस है। अब जमा के दो मरातब हैं, जमा के दो मरातब हैं। एक मर्तबा जो है वो मकान है और दूसरा खुद जमान है। देखें जरा, जमा के दो मरातब हैं, मरातब मैंने दो सतहें हैं, दो दर्जे हैं। एक दर्जा मकानियत है और एक दर्जा खुद जमानियत है। मकान में फासले होते हैं, जमा में फासले नहीं होते। वही पहले जुमले की दोबारा तकरार हुई है। एक मर्तबे में मुशाहिदा करने वाला तरतीब वार देखता है, तरतीब से देखता है चीजों को। देखने का अंदाज इस तरह होता है कि वो एक लम्हे के बाद फिर दूसरे फिर तीसरे, इसी तरह मजीद लम्हों के यके बाद दीगरे गुजरने का इदराक करता है। क्या करता है? इदराक करता है, यानी उसे महसूस होता है कि लम्हे गुजर रहे हैं। मसलन हम वक्त को सेकंड, मिनट, घंटों में नापते हैं। अब एक मिनट से दूसरे मिनट तक पहुंचना, फिर तीसरे मिनट में दाखिल होना, ये इदराक की तकरार है। इसी तकरार से शहूद में गहराई पैदा होती है। इदराक की तकरार से, इसीलिए जब हम कोई नुक्ता समझना चाहते हैं, कोई पॉइंट समझना चाहते हैं, तो वी आर रिक्वायर्ड टू रिपीट इट, यानी हमें चाहिए कि हम उसको जहन में दोहराते रहें। ये जब तक हम जहन में किसी नुक्ते को, बात को दोहराते नहीं हैं, वो बात जहन नशीन नहीं होती, वो इदराक का हिस्सा नहीं बनती, तो समझ कहां से आ जाएगी। मैं यहाँ पे के बात जरा इस मौजू से थोड़ा सा रिलेटेड तो है लेकिन यहाँ लिखी हुई नहीं है, अर्ज करने लगा हूँ। देखें, आजकल हमें ये मोबाइल के इस्तेमाल में, व्हाट्सएप हो गया तो यूट्यूब हो गया तो ट्विटर हो गया, तो ये सारे टूल्स इसलिए दिए गए हैं कि हम इनको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन हुआ ये कि वो फेसबुक से लेके तो ट्विटर तक और यूट्यूब से लेके व्हाट्सएप तक सब हमारी तवज्जो के इंतजार का सबब बने हुए। हम एक नुक्ता पढ़ते हैं, एक चीज पढ़ते हैं और फौरन दूसरी चीज को देखने लगते हैं। पहली चीज की तकरार होती नहीं है, ना उसकी अच्छाई ना उसकी बुराई समझ में नहीं आती, बस हाँ ठीक है, अच्छा है, खूबसूरत लिखा हुआ है। फिर अगला, दूसरा, तीसरा, चौथा, शाम होती है, खाली उस जहन, हम जाके सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, फिर ये चीजों की तकरार नहीं हो रही। तकरार तब होगी जब जहन में ठहराव होगा, जब जहन रुकेगा। इसलिए इस मसरूफियत को जरा सा कंट्रोल करें और एक बात को पढ़ें तो फिर उसके अंदर उतरें, उसमें गहराई में उतरें। आंखें बंद करके लगातार उसकी तकरार करना मुराकबा कहलाता है। बहरहाल ये इजाफी बात कर गया मैं। ये मसलन यहाँ पे तकरार से शहूद में गहराई पैदा होती है, ये जरूरी है। तो इन गहराइयों को हम मकानी फासले कहते हैं। जब ये गहराई पैदा होती है तो यहां से मकानियत भी जन्म लेती है और उसमें फासला भी पैदा होता है। तो जब तक फासला नहीं होगा कोई चीज दिखती नहीं है। मसलन दिन एक स्पेस है, रात एक स्पेस है, फूल एक स्पेस है, ख्याल एक स्पेस है, जो कुछ हमारे सामने है सब स्पेस है। और करें क्या क्या चीजें स्पेस में डाल दी। दिन एक स्पेस है, रात एक स्पेस है, फूल एक स्पेस है। अब ये तो मादी चीजें थी, या किसी हद तक हम दिन और रात को भी गहला, वो मादी तो नहीं है लेकिन चलें। लेकिन ख्याल एक स्पेस है, गौर करें, ख्याल भी जो आपके ख्याल आ रहा है ये भी मकानियत के जोन में आ रहा है, ये भी एक स्पेस है। और फिर जो कुछ हमारे सामने है यानी हमारी निगाह जिस जो कुछ देख रही है वो सब स्पेस है, वो छोटा कुर्रा हो या बड़ा सब स्पेस है। अब छोटे कुर्रे से क्या मुराद है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो या पूरी कुर्रा अर्ज, सब एक स्पेस है। एक सेकंड को संखों हिस्से में तकसीम कर दिया जाए, संख कितने होते हैं, संख कहते हैं ये हिंदी गिनती में, समझें कि ट्रिलियन को कहते हैं, ये हम गिनती गिनते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दह हजार लाख दह लाख करोड़ दह करोड़, फिर अरब दह अरब खरब दह खरब, फिर ये संख और फिर महासंख, ये इस तरह से गिनती आगे चलती रहती है। तो ये सेकंड को संख हिस्से में तकसीम, संखों यानी एक सेकंड के ट्रिलियंस ऑफ पार्ट्स कर दिए जाएं, तो हर हिस्सा भी एक स्पेस है। यानी स्याह नुक्ते में अजल से अब तक के तमाम खदोखाल तय दर तय मौजूद हैं और सब खदोखाल स्पेस हैं। स्याह नुक्ता अपनी तकरार करता है। अब इसकी एक दूसरी मिसाल मैं अर्ज करने लगा, अगर आपने डॉट प्रिंटर देखा हो उसमें क्या होता है, एक प्रिंटर होता है उसमें एक पुर्जा जो है वो एक डॉट लगाता है, डॉट वो एक कतार में डॉट्स लगाता चला जाता है, जहां लगानी होती है वहां लगाता है, जहां नहीं लगानी होती वहां नहीं लगाता, फिर वो दूसरी डॉट दूसरी लाइन में दूसरी बार डॉट्स लगाता है जहां लगानी, उसके नतीजे में हरूफ भी बनते हैं, उसके नतीजे में तस्वीरें भी बनती थी, तो उसे डॉट प्रिंटर कहते थे। यानी कि इसी तरह ये स्याह नुक्ता जो है वो उस डॉट की तरह टक 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 चल रहा है, नुक्ते लगा रहा है, तस्वीरें बन रही हैं, पीछे पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम काम कर रहा है। तो इसी बात को कहा है कि स्याह नुक्ते में अजल से अब तक के तमाम खदोखाल तह दर तह मौजूद हैं और सब खदोखाल स्पेस हैं। ये स्याह नुक्ता अपनी तकरार करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता है। अब छलांग लगाना मानी रखता है, स्याह नुक्ते की गहराइयां इस दर्जा लातनाहियत इख्तियार कर लेती हैं कि पहले अंदाजे नजर का इदराक मुमकिन नहीं रहता। यानी स्याह नुक्ते की गहराइयां इस दर्जे लातनाहियत इख्तियार कर लेती हैं, वो मितनाहियत से भी बाहर निकल जाता है। और फिर ये जो हमारा अंदाजे नजर है वो इस बात का इदराक ही नहीं कर सकता कि इसके साथ हुआ क्या, ये कहां चला गया। ये अंदाजे नजर अपना एक अलग इदराक रखता है। कौन सा अंदाजे नजर, ये जो रूहानी और फिक्री जो रूहानी अंदाजे नजर है उसकी बात हो रही है। ये एक अपना अलग इदराक रखता है। इस अंदाजे नजर में जब सेकंड की संख दर संख तकसीम का तस्करा किया जाता है तो जहन की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि हम इस रफ्तार को किसी आदादो शुमार में बयान नहीं कर सकते। ये है वो पहला अंदाजे नजर, यानी ये वाहमा के दर्जे का अंदाजे नजर है। वाहमे के दर्जे पे नजर इस रफ्तार से काम करती है, एक सेकंड को संख दर संख हिस्सों में तकसीम करने का मतलब ये है कि हमारा शऊर स्पेस का तस्करा कर रहा है लेकिन अंदाज अलग है। जब हम स्याह नुक्ते की गहराइयों में उतर कर देखते हैं तो हमें वो लामितनाही नजर आता है। गौर करें, यानी जब हम ये एक सेकंड की तकसीम का जिक्र कर रहे हैं तो हमारा शऊर असल में स्पेस का तस्करा कर रहा है, लेकिन अंदाज अलग है। और जब हम स्याह नुक्ते की गहराइयों में उतर कर देखते हैं, स्याह नुक्ते की गहराइयों में उतर कर देखते हैं तो हमें वो लामितनाही नजर आता है, यानी कि फिर हमें उसकी कोई इंतहा नजर नहीं आती। वो इतना फैला हुआ नुक्ता हो जाता है कि हम किसी भी तरह उसकी लामितनाहियत का तस्करा नहीं कर सकते। इसी इदराक को अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर फरमाया है। ये तमहीद बांधी गई है आपको लैलतुल कदर के हवास से आशना करने के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने ये उतारा इन्ना अनजलना हू फी लैलतुल कदर। वरना हमारे यहां तराजम में क्या मिलता है, हमने कुरान उतारा। भाई अल्लाह ने तो कहीं नहीं लफ्ज कुरान बरता। इन्ना अनजलना हू, हमने उसे उतारा शबे कदर में, और तू क्या बूझा क्या है शबे कदर। व मा अदरा का मा लैलतुल कदर, शबे कदर बेहतर है हजार महीने से। उतरते हैं फरिश्ते रूह उसमें अपने रब के हुक्म से हर काम पर। अमान है वो रात सुबह के निकलने तक। लैलतुल कदर एक ऐसा इदराक है जो इदराक हमारे शऊरी इदराक के मुकाबले में 60,000 गुना है। यानी लैलतुल कदर के हवास 1,000 दिन और 1,000 रात के हवास से अफजल हैं, और 1,000 दिन और 1,000 रातों के हवास की रफ्तार से लैलतुल कदर के हवास की रफ्तार ज्यादा है। ये 1,000 महीना, ठीक है, यहाँ पे ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक हो गई है, ये 30,000 दिन और 30,000 रातें कर लीजिए, क्योंकि हजार महीना कहा गया है, हजार दिन या हजार रातें नहीं। तो इससे उलझने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। स्याह नुक्ते का अंदाजे नजर दो तरह से है, यानी ये स्याह नुक्ता भी दो अंदाज रखता है, क्योंकि अल्लाह ने जब ये कह दिया हर चीज को जोड़ों में बनाया तो इसके जो अंदाजे नजर है उसके भी दो तरीके, दो तरह का है, तरह दो टाइप्स का है। स्याह नुक्ते का अंदाजे नजर ये है कि इसको हम छोटे से छोटे जर्रे में तकसीम करके इसका तस्करा कर सकते हैं। एक अंदाज ये तकसीम हो जाता है। स्याह नुक्ते का दूसरा अंदाजे नजर ये है कि जब हम गहराइयों में तफक्कुर करते हैं तो हमें ऐसी लातनाहियत मिलती है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। यहां पे मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, हमारे निजाम तालीम में दो काम करवाए जाते हैं। एक है चीज को एक्सप्लेन करना, किसी शेर को दिया जाता है कि जी आप इसकी शरह करें, तशरीह करें, और दूसरा ये कहा जाता है कि आप किसी पैराग्राफ की समरी लिखें, यानी उसकी प्रेसी राइटिंग कहलाती है। यानी शौरी सतह पे भी हमें यही काम करना होता है कि हम या तो चीज को फैलाकर समझते हैं या उसको समेटकर खलासा करके एक नुक्ते में समझते हैं। तो ये दो अंदाजे नजर हैं इदराक के। और दोनों सही हैं। एक तरफ जब हम उसको क्या करते हैं, छोटे से छोटे हिस्से में तकसीम करके समझ रहे हैं, तो ये शौरी अंदाज हो गया। लेकिन जब आप उसको समअप करके समझ रहे हैं और एक नुक्ते में बंद कर रहे हैं, तो वो पूरी बात एक पॉइंट में समझ आ रही है। इसी चीज का नाम ये बताया जा रहा है कि जितनी ज्यादा आप गहराई में उतर कर किसी चीज को समझेंगे, तो गोया हम स्याह नुक्ते के इदराक के करीब पहुंचते जाएंगे। अब इस बात को मजीद हजूर मुर्शिद करीम ने कैसे वाज़े किए, कायनात में बयक वक्त चार इदराक काम कर रहे हैं, चार इदराक काम कर रहे हैं। ये लफ्ज चार का हिंसा ज़हन में रखिएगा, ये चारों दर्जे के इदराक हैं, वही वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास, एहसास के दर्जे का इदराक, फिर तसव्वुर के दर्जे का एहसास, ख्याल के दर्जे पे ऐसा इदराक, और फिर उससे ऊपर वहमा के दर्जे पे इदराक का हसूल। तो ये चार इदराक बग़ैर वक्त काम कर रहे हैं। अब इदराक को समझने के लिए कायनात की गहराई और पहनाई के बारे में जानना जरूरी है। एक चीज गहराई है और एक उसका जाहिर है, एक सतह पहनाई, जिस चीज को उसने पहना हुआ है। एक तरफ कायनात को सतही तौर पर देखा जाता है और दूसरी सतह में कायनात को पहनाई में देखा जाता है। कायनात को पहनाई में देखना और गहराई में महसूस करना या दिल की आंख से कायनात का मुशाहिदा करना, ये सब इदराक की तर्जें हैं। गहराई में महसूस करना या दिल की आंख से देखना, दिल की आंख से देखना ही असल में गहराई से देखना है या सोचना है। ये दोनों इदराक की तर्जें हैं। अब इंसान के अंदर गहराई पैदा हो जाती है तो दिल की आंख खुल जाती है, इसको कहते हैं दिल की आंख खुलना। अब यहां मैं आपसे क्या अपने तजर्बात शेयर करूं, मुझे ऐसे लोगों से मिलने का इत्तफाक हुआ कि जिनका दावा है कि उनके दिल की आंखें खुली हुई हैं और उनकी बातों में इतनी भी गहराई नहीं है कि उसमें आदमी अपना पैर ही गीला कर सके, चे जाए कि उसमें डूब के देखा जाए। तो गहराई होनी चाहिए फिक्र में, तो फिक्र के अंदर जब गहराई पैदा होती है तो दिल के अंदर की आंख खुल जाती है। दिल की आंख से देखना इतनी वसत रखता है कि पूरी कायनात आंखों के सामने आ जाती है। जब आपका आहिस्ता आहिस्ता ये जहन बन जाता है कि आप अपने दिल की आंख से देखना सीख जाते हैं, तो फिर पूरी कायनात निगाह के सामने आती है। यानी आप इनफरादी दर्जे से उभर कर नौई सतह पे आके पूरी नौ को देखना और समझना सीख जाते हैं, और फिर उससे राइज करके पूरी कायनाती सतह को देखना सीख लेते हैं। तो ये है, पूरी कायनात आंखों के सामने आ जाती है। जाहिर में देखना पहनाई में देखना है, और बातिन में देखना गहराई में देखना है। पहनाई या गहराई में देखना, यानी इस तलाह को, ये फिकर तलब है, यानी इस पे गौर होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह वो है जिसने जमीन और आसमान को छह दिन में बनाया और फिर अर्श पर मुतमक्किन हो गया। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते हैं, हम तुम्हारी रगे जहां से ज्यादा करीब हैं। यानी एक तरफ अल्लाह का अर्श पर मुतमक्किन होना और दूसरी तरफ रगे जहां से करीब होना, तो ये क्या बात हुई कि वही वो अर्श पे मुतमक्किन है या रगे जहां से करीब है। ये दोनों बातों में मफहूम मुश्तरक है, क्या कि पहनाई में इदराक करना ला तनाहियत के बोध में ले जाता है। अब ये मफहूम का इश्तराक देखें कि अर्श और रगे जहां से करीब होना, ये असल में दोनों एक ही चीजें हुई या नहीं हुई। और दूसरा मफहूम यह कि पहनाई में इदराक करना, पहनाई यानी पहनाई में इदराक करना हमें ला तनाहियत के बोध में ले जाता है, यानी ला तनाहियत के जो बोध यानी उसकी जो डायमेंशन है ला तनाहियत की साइड पे ले जाता है। ये पहनाई में इदराक करना ला तनाहियत के बोध में ले जाता है। इसी बोध को अल्लाह ताला ने अर्श फरमाया, यानी ये ला तनाहियत की सिमत एक डायरेक्शन एक डायमेंशन का नाम अर्श हुआ। और गहराई में इदराक करना इंसानी शऊर के कुर्ब में पहुंचाता है। गहराई में इदराक करना शऊर के कुर्ब में पहुंचाता है। एक बोध है यानी दूरी है और एक कुर्ब है, ये वो नुक्ता है जहां कुर्ब और बोध एक हो जाते हैं और इन्हीं को इश्तराक का। और इसी को अल्लाह ताला ने रगे जां से अकरब फरमाया है। अकरब मैंने करीब से भी करीब, एक कुर्ब होता है करीब होना और अकरब करीब से भी करीब। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ला तनाहियत का बोध और ला तनाहियत का कुर्ब ये दोनों मुकामात एक ही हैं। इसको दोबारा समझे, ला तनाहियत तो चूंकि उसकी तो इंतहा ही कोई नहीं, तो उसका बोध क्या हुआ और उसका कुर्ब क्या हुआ, ये दोनों असल में ला तनाहियत के जाविये हैं और दोनों मुकामात एक ही हैं, सिर्फ इदराक के अंदाज अलग अलग है। इदराक एक तरफ पहनाई में सफर करके अर्श तक पहुंचता है और दूसरी तरफ गहराई की मुसाफतें तय करके रगे जां के अकरब में जज्ब हो जाता है। ये है सारा निजाम। अब ये कायनात के चार इदराक, अब ये वही चार इदराक देखिए, अब इनके नाम लेने लगे। पहला इदराक तस्वीद, दूसरा इदराक तजरीद, और तजरीद नहरे तस्वीद का दूसरा रुख है, इसलिए कि हर बुलंदी की एक पस्ती है और हर पस्ती की एक बुलंदी है, तो तस्वीद का पस्त रुख ही तजरीद है। अब नहरे तजहीर नहरे तशहीद ये दोनों रुख कायनात की उन हदूद का तज़करा करते हैं जो मावराए कायनात से जा मिलती हैं, यानी असल में इन चार दर्जों का इदराक ही इंसान की असल मंजिल है। ये चार नहरें हिजाबे अजमत, हिजाबे किबरिया, हिजाबे महमूद और अर्श से जारी होती हैं। इन चार नहरों का इस्तलाही नाम हिजाबे अजमत, हिजाबे किबरिया, हिजाबे महमूद और अर्श से जारी होती हैं। ये हैं चार, इनका सोर्स ये है। ये चारों मुकामात कायनात की पस्ती और बुलंदी, बुलंदी और पस्ती का इजहार है। इन चारों इदराकों को अलग अलग बयान किया जाए तो इस तरह कहा जाएगा कि तजरीद तस्वीद का दूसरा रुख है और तजहीर का दूसरा रुख तशहीद है, यानी तस्वीद का पस्त रुख तजरीद है और तजहीर का बुलंद रुख तशहीद है। अब अल्लाह ताला इस मफहूम को इन अल्फाज में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बुलंदियों और पस्तियों का नूर है, जैसे ताक उसमें कंदील और कंदील के अंदर चिराग रखा हुआ, یہ مقدس تیل کا چراغ بغیر کسی ظاہری روشنی کے روشن ہے، جس کی روشنی نور اندر نور ہر سمت سے آزاد ہے. جب تک سیاہ نقطہ نورانی کیفیت سے معمور ہے وہ ہر سمت سے آزاد ہے. جب سیاہ نقطہ تکرار کے بعد نزول کر کے روشنی کی حدوں میں داخل ہوتا ہے تو ٹائم اور سپیس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب تلاش کرتے ہیں تو اللہ کی ہر صفت نور در نور پردے میں ہے. یہ نور در نور پردے میں اللہ کی صفات ہر وقت ہر آن متحرک ہیں. ان صفات کو متحرک کرنے کا ذریعہ ایک نقطہ ہے. جیسے جیسے نقطے میں تحریک ہوتی ہے وہ نزول کرتا ہے. اس نزول میں دو رخ ہوتے ہیں، ایک پستی کا رخ دوسرا نزول کا رخ. صعود، ایک پستی کا رخ بلندی اور دوسرا نزول کا رخ صعود. اور نزول پستی اور بلندی، پستی اور بلندی اللہ تعالی کے تجلیات کے انوار ہیں. یہ چار نہریں چار ادراک ہیں، اور انہی چار ادراک کے ذریعے اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جس سیاہ نقطے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہی نقطہ ان چاروں ادراکوں کا سر چشمہ ہیں. یہاں پہ ایک اضافی بات سن رکھیں کہ ایک بار حضور مرشد کریم نے مسجد میں، یہ جامعہ عظیمیہ میں لیکچر دیتے ہوئے عرس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، شاید 26 جنوری کی صبح کی بات ہے یا 27 جنوری کی صبح کی بات ہے، تو اس پہ حضور نے فرمایا تھا کہ آپ سیاہ نقطے کا مراقبہ کیا کریں، اور اس کا طریقہ بھی ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ کیسے کرتے ہیں، کہ آپ مراقبے کے انداز میں بیٹھ کے اس نشست میں، آرام دہ نشست میں بیٹھ کے خود کو بالکل اور اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، اور وہاں جو ایک سیاہ نقطہ ہے اسے تصور کریں، اور پھر دیکھیں کہ وہ اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے. اور شرط یہ رکھی تھی کہ اس کے ساتھ سر نہیں ہلنا چاہیے. تو یہ اجازت انہوں نے اس دن عام کر دی تھی. تو اگر کوئی بہن بھائی اسے کرنا چاہیں، کوئی دوست اسے کرنا چاہیں، تو میرا خیال یہ ہے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس دن کے بعد سے اس مراقبے کی عام اجازت ہے. یہ سلسلے کے دیگر اسباق، یعنی کہ جو تصور شیخ کا مراقبہ کرنا ہے اور جو دیگر اسباق ہیں، ان کے علاوہ اگر روحانیت کی طرف جانے کا ذوق اور شوق ہو تو آپ اسے پابندی کے ساتھ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان چاروں ادراکوں کے سر چشمے تک رسائی کا شرف ضرور عطا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی توجہ سے، اتنی محبت سے اور اتنی شفقت سے میری اس ریڈنگ کو، میرے اس پڑھنے کو شرف سماعت عطا کرتے ہیں. میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. کسی بہانے مجھے یہ پڑھ کر تو کیا کہتے ہیں، آموختہ دوبارہ دہرانے کا موقع مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.